Wir drei, ob ich noch? Namo Buddhai. Jai Bhim.
Jai Bhim.
So yesterday we left the Buddha sitting under the Mahabodhi tree.
तो कल हमने बुद्ध को महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए वहाँ अभी छोड़ दिया.
And we were remembering the four principal elements of what happened there.
और फिर चार जो मुख्य तत्व है जो कुछ वहाँ घटित हुआ उसको हमने देखा है.
His strong commitment.
अब उनका एक जबरदस्त मतलब संकल्प.
His remembering that experience of dhyana.
और ध्यान के उनके अनुभव को उन्होंने याद किया.
His seeing through Mara.
और मार को वो देख सके.
And then his realization of the way life is.
और जैसा जीवन है उसको वो समझ पाए.
So I want to just dwell a little bit more on that last element.
लेकिन ये जो आखिरी तत्व है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अधिक कुछ कहना चाहता हूँ.
Because in a way it's easy for us to understand that you know, we need to make a commitment.
अभी अब ये आसान है समझना कि हमें संकल्प करना जरूरी है.
Perhaps it's easy enough for us to understand what it is to relax and open ourselves.
और शायद ये भी हमारे लिए बड़ा आसान है समझना कि बहुत सहजता से और बड़े अच्छे ढंग से हम रहे.
It's even relatively easy for us to understand what it means to recognize Mara.
और शायद अगर देखा जाए तो ये भी हमारे लिए आसान हो जाता है कि मार जो है उसको किस प्रकार से हम पहचाने.
But it's more difficult for us to understand what's meant by seeing the true nature of things.
लेकिन हमारे लिए ये बड़ी कठिन बात हो जाती है कि वस्तु मात्र का जो सही स्वरूप है उसको कैसे पहचानना.
So the first thing we need to remember is that before the Buddha, nobody understood these things.
एक बात हमें जानना जरूरी है कि बुद्ध के पहले इस बात को कोई भी समझ नहीं पाया.
Nobody understood the way life really is.
तो जीवन जैसा है उसे इसके पहले कोई भी जान नहीं पाया.
Everybody thought that there was some eternal God behind everything.
हर एक को ऐसा लगता था कि हर एक चीज के पीछे कोई शाश्वत ईश्वर है.
They thought that everything happened because of God.
हर कोई चीज जो होती है वो केवल ईश्वर की वजह से होती है ऐसी लोगों की मान्यता थी.
Because of various gods.
क्योंकि बहुत सारे ऐसे ईश्वर है.
And they believed that you had to please those gods and be in good relations with them.
और उनका ऐसा विश्वास था कि आपने ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहिए और उन पर आपका विश्वास होना चाहिए.
So that was the main thing that people would believe at that time.
और उस समय लोगों का यही एक विश्वास थी मान्यता थी.
Or there are a few people who believed that it was all just meaningless.
और कुछ थोड़े लोग ऐसे थे वे ये जानते थे कि सारी चीजें ये अर्थहीन है.
That you just lived, had pleasure, died.
तो आप जीवन जिए आनंद लीजिए और एक दिन मर जाइए.
Those were the principal ways in which people would have seen things at the time of the Buddha.
तो बुद्ध के समय कुछ लोग ऐसे थे इसी प्रकार से जीवन को देखते थे.
Actually, it's the same way that people see things in India today.
वास्तविक देखा जाए तो भारत में आज भी इसी प्रकार से लोग जीवन को देखते हैं.
People either think they've got to please a god or just have fun.
तो एक तो लोगों को लगता कि एक तो ईश्वर को उन्होंने प्रसन्न रखना चाहिए या केवल जीवन में मौज मजा करनी चाहिए.
So what the Buddha discovered, what he realized, was completely new.
बुद्ध ने जो खोज के निकाला जो उनको अनुभूति प्राप्त हुई वो पूरी तरह से नई थी.
And nobody could teach him.
और कोई भी उनको ये पढ़ा नहीं सका.
He couldn't find anybody who could show him the way.
इस प्रकार का मार्ग दिखाने के लिए कोई भी व्यक्ति उनको नजर नहीं आया.
So you can imagine what it was like for him sitting here.
तो आप कल्पना कर सकते हैं बुद्ध के लिए यहाँ बैठे रहना किस प्रकार का होगा.
He was having to try to discover it all for himself.
तो स्वयं के लिए सारा खोज करने का वे प्रयास कर रहे थे.
So that tells you what sort of man he was.
इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति थे.
So he was trying to see really what is going on.
तो सही में जो कुछ हो रहा है वो क्या है उसे देखने का उन्होंने प्रयास किया.
And what he realized is that there's absolutely nothing that is fixed.
उन्हें फिर क्या अनुभूति प्राप्त हुई कि उन्होंने देखा कि जो कुछ भी है वो अपने आप में पक्का नहीं है, ठोस नहीं है.
There's nothing that is permanent.
कोई भी चीज नित्य नहीं है.
There's nothing that doesn't change.
कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परिवर्तनशील नहीं है.
And when I say nothing, I mean nothing.
जब मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज नहीं, इसका अर्थ होता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं.
There's no grand God.
कोई भी ऐसा बड़ा मतलब ईश्वर नहीं है.
Nothing lasts forever.
कोई भी चीज निरंतर बनी नहीं रहती है.
You know, even this earth doesn't last forever.
अभी मतलब ये जो पृथ्वी है, ये मिट्टी है, ये भी इसी प्रकार से बनी नहीं रहती.
This earth came into existence many billions of years ago.
तो लाखों करोड़ों साल पहले ये जो पृथ्वी है हमारी, इसका निर्मिति हुई है.
And it's still changing, forming.
और आज भी इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं.
फॉर इंस्टेंस, इंडिया इज एक्चुअली मूविंग नॉर्थ.
अभी उदाहरण के रूप में देखा जाए तो भारत जो है वो उत्तर की तरफ अभी बढ़ रहा है.
वी थिंक ऑफ इंडिया इज वेरी स्टेबल एंड सॉलिड.
हम ऐसा सोचते हैं कि भारत बिल्कुल एक जगह स्थिर है, उसी जगह बना हुआ है.
बट जस्ट बाय अ फ्यू मिलीमीटर्स एवरी ईयर इट्स मूविंग नॉर्थ अप इनटू सेंट्रल एशिया.
लेकिन कुछ थोड़े मिलीमीटर हम देख रहे हैं कि वो उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, जो सेंट्रल एशिया है उसकी तरफ बढ़ रहा है.
And that the Himalayas are being formed where India meets Central Asia.
और फिर वो जो हिमालय है उसकी वहाँ निर्मिति हो रही की जा, वो सेंट्रल एशिया की तरफ ये भारत जो है वो बढ़ रहा है.
So everything is changing, everything is shifting.
तो हर एक चीज में परिवर्तन हो रहा है, हर एक चीज अपनी जगह बदल रही है.
So the Buddha, when his mind was clear, he could see that this was the way things were.
और फिर बुद्धा जब उनका मन स्पष्ट हो गया तो ये जगत कैसा है उसे वे देख पाए.
It became obvious to him that there's nothing fixed anywhere.
एक बात उन्हें स्पष्ट हो गई कि कहीं भी कोई भी चीज बिल्कुल पक्की नहीं है, ठोस नहीं है.
Now, what's the consequence of that?
अब इसका क्या परिणाम होगा?
If you think that, if you realize that there's nothing fixed, what does it mean?
अगर ये आपको अनुभव हो जाए कि कोई भी चीज पक्की नहीं है, ठोस नहीं है, तो फिर इसका अर्थ आपके लिए क्या होगा?
What it means is there's nothing that you can possess.
इसका अर्थ ऐसा होता है कि कोई भी चीज हम उसको पकड़ के नहीं रख सकते, हमारे पास नहीं रख सकते.
There's nothing you can hold on to.
कोई चीज ऐसा नहीं जिसको हम पकड़ के रह सकते हैं.
Because anything you hold on to will pass away.
क्योंकि जो भी चीज आप पकड़ेंगे वो चीज बाद में निकल जाएंगी.
Your own life is passing away all the time.
आपका स्वयं का जीवन हर समय वो जा रहा है.
Every day we come nearer and nearer to our own death.
हर समय हम हमारे मृत्यु के करीब करीब जा रहे हैं.
Everything that we might want to own can be taken away from us.
तो जो भी चाहते चीजें हमारे पास रही वो चीजें हमसे निकल जाएंगी.
You know, you get money.
आपको पैसा मिलता है.
But any time that money can go.
तो कभी भी ये पैसा आपसे निकल भी जाएगा.
I was saying on the last retreat that I had a very strange experience like this myself.
तो पिछले शिविर में मैं बता रहा था कि इस प्रकार का एक बड़ा अनुभव मुझे आया.
You know, you think the bank is very safe.
आपको ऐसा लगता है कि बैंक जो है ये बहुत ही सुरक्षित है.
You think of the bank as eternal.
आपको लगता है कि बैंक जो है ये बिल्कुल शाश्वत है.
And so I did a long solitary retreat 2 years ago.
दो साल पहले एक लंबे समय के लिए मैंने एकांतवास किया.
And before I went on the retreat, I found a good bank which gave a good rate of interest.
और वो एकांतवास के पहले मैंने देखा एक अच्छी बैंक है जो अच्छी तरह से ब्याज भी देती है.
And I put a little bit of money that I had in that bank.
और थोड़ा जो पैसा मेरे पास था उस बैंक में मैंने डाल दिया.
And I put some of Srimala's money in that bank too.
और श्रीमाला के जो पैसे है वो भी मैंने उस बैंक में कुछ थोड़े डाल दिए.
So after my retreat, I went on the internet to see how much money I had.
और फिर मेरे उस शिविर के पश्चात मैं गया इंटरनेट पे, मैंने देखा कि मेरे पैसे कितने हैं अभी.
Bank gone, money gone.
बैंक भी गई और पैसे भी गए.
And all I could do was laugh.
और मैं केवल हंस सकता था उस समय.
Because you think a bank is like माउंट एवरेस्ट.
हम ऐसा सोचते हैं कि बैंक मानो बिल्कुल हिमालय के समान है.
इट विल लास्ट फॉरएवर.
हाँ, वो उसी प्रकार से बनी रहेगी.
बैंक्स कम बैंक्स गो.
तो बैंक आती है और बैंक जाती है.
सो ऑल माय मनी हैड गॉन.
तो मेरे सारे पैसे चले गए.
Fortunately, I was able to get it back eventually.
तो कुछ समय के बाद मतलब मैं भाग्यशाली रहा कि वो पैसे मुझे मिल सके.
But it made me realize that I thought of that bank as something fixed.
तो मैं ऐसा सोच रहा था जैसे ये बैंक जो है बिल्कुल वहाँ बनी रहेंगी, वहाँ पक्की रहेंगी.
And you must have many experiences of that kind yourself.
तो आपको स्वयं को भी इसी प्रकार के बहुत सारे अनुभव आए होंगे.
You think you can really rely on something.
आपको लगा होगा कि किसी चीज पर आप पूरी तरह से निर्भर रह सकते हैं.
You know, for instance, other people.
उदाहरण के रूप में हम और लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं.
You think you can really rely on them and that you know you'll be safe with them.
आपको लगता है कि उनके ऊपर आप निर्भर रह सकते हैं, वहाँ पूरी आपकी सुरक्षितता है.
But it's not necessarily true.
लेकिन आवश्यक नहीं कि ये बिल्कुल सत्य होगा ही.
I just seeing my two Hungarian friends there.
तभी मेरे जो हंगेरियन दो मित्र हैं उनको मैं देख रहा हूँ.
And they're doing very very good work in Hungary.
और हंगेरी में वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं.
But they've had two experiences of relying on other organizations.
और उनको दो ऐसे अनुभव आए कि अन्य संगठन के ऊपर वो निर्भर रहे.
And I think it's actually three experiences. Yeah.
तो मुझे लगता है कि तीन ऐसे अनुभव है.
And each time those people have let them down.
और हर वक्त उन लोगों ने एक प्रकार से मतलब उनको नीचा ही दिखाया, उनको ठीक से नहीं होने दिया.
Built a very good school.
उन्होंने एक अच्छी मतलब पाठशाला निर्माण की.
And that got taken away.
और वो पाठशाला उनसे चली गई.
And yes, so I've always felt well a lot of respect for them. They keep on going even though they have so many difficulties.
तो मुझे उनके प्रति बहुत ही आदर है. भले ही इतनी सारी कठिनाई आई, इसके बावजूद उन्होंने अपना कार्य बनाए रखा.
But you find in life there's very little you can really rely on.
तो जीवन में बहुत कुछ कम ऐसा है कि जहाँ सही में हम पूरी तरह से निर्भर रह सकते हैं.
You rely on your family.
आप अपने परिवार के ऊपर निर्भर रहते हैं.
But you cannot stop them from getting ill.
लेकिन
from dying.
उनको बीमार होने से, उनकी मृत्यु होने से आप उन्हें रोक नहीं सकते.
So that there's no element of your experience that you can really rely on as fixed.
तो आपके अनुभव का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसके ऊपर आप बिल्कुल पक्का करके कुछ निर्भर रह सके.
So the Buddha had been looking for something that he could rely on, something that was fixed.
तो बुद्ध ऐसी चीज देख रहे थे कि जिस पर वो निर्भर रह सके, जो बिल्कुल ठोस है, पक्का है.
Something that would give him satisfaction and lasting happiness.
तो कोई ऐसी चीज है जिससे उनको संतुष्टि मिले, कुछ इस प्रकार का सुख निरंतर उनका बना रहे.
But he realized that was not possible.
उनको ये अनुभव हो गया कि ये संभव नहीं है.
Everything's coming into being, passing away.
तो हर एक चीज जो है वो अस्तित्व में आती है और फिर उसके बाद वो चले जाती है.
If you try to cling to it, you will suffer.
अगर आप उसको पकड़ के रहना चाहेंगे तो आपको अंततः दुख ही मिलेगा.
Sooner or later it'll let you down or you'll lose it.
अभी या बाद में एक तो उससे आपको तकलीफ हो जाएंगी या फिर आपसे वो छूट जाएंगी.
So that meant that the Buddha realized he couldn't cling.
तो इसका अर्थ ऐसा होता कि बुद्ध को यह अनुभव हो गया कि किसी चीज को पकड़ के नहीं रख सकते.
So, what do you do when you can't cling?
अब किसी चीज को हम पकड़ के रख नहीं सकते तो फिर हम फिर क्या करते हैं?
You let go.
आप उसको जाने देते हैं.
You stop trying to cling.
तो आप पकड़ के रखना छोड़ देते हैं.
You just accept the way things are.
तो आप इस बात को स्वीकारते हैं, चीजें जैसी है वैसा ही उसको स्वीकारते हैं.
You accept they come. They go.
आप इस बात को स्वीकार दें कि वो आती है और जाती है.
And you don't become attached to them.
आप उसके साथ आसक्त नहीं होते.
So because of that insight into the way things are, the Buddha let go.
और चीजों का चीजें जैसी है वैसे उनको समझ में आई, वो अंतर्दृष्टि उनको प्राप्त हो गई, तो बुद्ध ने उसको वैसे ही जाने दिया.
But what does that mean when you let go? What happens?
जब आप ऐसा जाने देते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है उसमें?
Does it all just become a big blank?
तो जैसे मानो पूरा बिल्कुल एकदम शांत हो गया या पूरा बिल्कुल कोरा हो गया, ऐसा उसका मतलब होता है?
Sometimes when you think of just letting go, it's very frightening.
तो कभी कभी चीजों को जाने देना ये बात बड़ी मतलब डरावनी लगती है.
If you didn't have family, if you didn't have money and so forth, well, it sounds very frightening.
तो अगर परिवार नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये चीज बड़ी भयावह लगती है, डरावनी लगती
है।
तो कोई ना कोई चीज है जो पकड़े रखते हैं, मतलब इसको छोड़ देना, ये बात बड़ी मतलब हमारे लिए भयप्रद होती है।
Seems very empty.
ऐसा लगता है कि पूरा खालीपन हो जाएगा।
But, that wasn't the Buddha's experience.
लेकिन बुद्ध का अनुभव ऐसा नहीं था।
When he let go, something else began to flower inside him.
तो जब उन्होंने चीजों को जाने दिया तो उनके अंदर कोई चीज ऐसी है जो एक प्रकार से खिलने लगी।
When you let go, a new kind of process opens up.
जब आप जाने देते हैं तो एक नई प्रकार की प्रक्रिया जो है वो आप में शुरू हो जाती है।
A process of great joy.
तो एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही आनंद मिलता है।
Of a great peace.
जहाँ बहुत शांति मिलती है।
Of great love.
या बहुत ही मैत्री निर्माण होती है।
You feel at one with everything.
तो हर एक के साथ जैसे मानो आप बिल्कुल एक है, ऐसा आपको लगता है।
Enmity comes from attachment.
तो आपकी जो शत्रुत्व है ये आसक्ति से निर्माण होता है।
मेरे, mine.
मेरा,
go away.
और बाकी चीजें हम दूर करते हैं।
But if you're not holding on to anything, you're living with everything.
अगर किसी चीज को आप पकड़ के नहीं रखते तो हर एक चीज के साथ आप रहते हैं।
So this unfolding succession of highly positive mental states arose within the Buddha.
तो बुद्ध के अंदर इस प्रकार से बहुत ही ऊंची ऐसी मानसिक अवस्था, ये प्रक्रिया जो एक के बाद एक ऐसे निर्माण होती गई।
And these positive mental states, well, in themselves, they too were impermanent.
अभी ये जो सकारात्मक मनोवस्था है ये भी एक प्रकार से अनित्य है।
But each one gave rise to another.
लेकिन हर एक एक मानसिक अवस्था दूसरे ऊंची मानसिक अवस्था को निर्माण कर रही है।
So from one positive state, another more positive still arose.
तो एक सकारात्मक मानसिक अवस्था से उससे और बेहतर सकारात्मक मानसिक अवस्था निर्माण हो रही है।
And what we find in the Mahabodhi temple here is that over these 7 weeks, a succession of highly positive states unfold within the Buddha.
तो हमने क्या देखा है कि महाबोधि विहार में तो ये 7 सप्ताह में अलग अलग प्रकार की ऊंची मानसिक अवस्था एक के बाद निर्माण होते गई।
Because he's let go of all clinging, तो because he's no longer fooled by things, these states can unfold.
तो जो भी पकड़ के रखना है उसको उन्होंने छोड़ दिया, किसी चीज को पकड़ के नहीं रखा, तो ये जो ऊंची अवस्था है वो अपने आप में मतलब खिलने लगी, निर्माण होने लगी।
And they unfold without ceasing.
तो किसी भी प्रकार से उसको मतलब नष्ट न करते हुए वो निर्माण होने लगी।
There's no end to those positive states.
तो ये जो सकारात्मक अवस्था है इसका कोई अंत नहीं है।
Of course, it's very difficult for us to really understand that.
अर्थात इसको सही में समझना हमारे लिए बहुत कठिन है।
Because our minds are so much based on attachment.
क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत अधिक आसक्ति में जुड़ा हुआ है।
And especially on attachment to ourselves.
और खासकर स्वयं से हम बहुत आसक्त है।
So it's difficult for us to really get into the mind of the Buddha.
तो हमारे लिए कठिन हो जाता है कि बुद्ध का जो मन है उस मन के जैसा देखना समझना।
but we can get somewhere, we can make some attempt.
लेकिन हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, हम कुछ थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं।
We can understand something.
हम कुछ तो समझ सकते हैं।
And by doing that, well, we come closer to the Buddha.
और ऐसा करके हम बुद्ध के और करीब आते हैं।
So, yes, we can understand what freedom means.
तो विमुक्ति क्या है इसको हम समझ सकते हैं।
We know that freedom in the sense it is both external and internal.
तो जिसको हम विमुक्ति कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं, वो आंतरिक भी है और बाह्य भी है।
You can be free externally, तो आप still be mentally enslaved.
तो बाह्य रूप से भले आप स्वतंत्र है लेकिन मानसिक रूप से आप गुलाम हो सकते हैं।
You know, we see this with caste, don't we?
तो जाति व्यवस्था जो है उसके साथ हम ये देखते हैं।
You may have to some extent got a little bit free from caste conditioning.
तो हो सकता है कि कुछ हद तक जो भी जातीय संस्कार है उससे आप मुक्त हो गए हैं।
You've got access to political power, you've got access to education and so on.
तो जो भी राजनीतिक शक्ति है, शिक्षा है, वो सारा प्राप्त करने के लिए आपको अभी मतलब आप खुले हैं।
But still the mental habits go on.
लेकिन जो मानसिक आपकी आदत है वो बनी रहती है।
You know, I see this often in Maharashtra.
तो अक्सर ये महाराष्ट्र में देखता हूँ,
you know, people have become Buddhists. They've left behind the old Maha status, yeah?
तो लोग बौद्ध बन गए, पुरानी उनकी जो महार जाति उन्होंने छोड़ दी.
But they still see things in terms of caste.
लेकिन आज भी लोग जो है वो जाति के रूप में चीजों को देखते हैं.
So that the mental habit of slavery goes on inside.
तो हमारे भीतर में ये जो मानसिक गुलामगिरी है उसकी जो आदत है वो बनी रहती है.
Really you're free from caste when you don't see people in terms of caste.
आप सही में जाति से तब मुक्त होते हैं जब लोगों को जाति के दृष्टि से आप कभी देखते ही नहीं.
When you don't see yourself in terms of caste.
आप स्वयं को भी जाति के दृष्टि से कभी देखते नहीं.
Even if somebody else sees you in terms of caste, you don't.
अगर आपको भी कोई जाति की दृष्टि से देख रहा है लेकिन इसके बावजूद भी आप स्वयं जाति की दृष्टि से देखते नहीं.
So that the Buddha had that sort of freedom.
तो बुद्ध को इस प्रकार की विमुक्ति मिली.
He didn't see himself in any fixed or limited way at all.
तो किसी भी मतलब मर्यादित या किसी भी पक्के ऐसे दृष्टिकोण से उन्होंने चीजों को नहीं देखा.
There's a story, isn't there, that after he left here, he was going on his way to Sarnath.
तो एक कहानी आपको मालूम होगी कि यहाँ की जगह छोड़ने के बाद वे सारनाथ की ओर निकल पड़े.
And he must have been a very, very impressive figure.
और बहुत ही प्रभावशाली ऐसा उनका व्यक्तित्व रहा होगा.
Because he was shining with this inner liberation.
तो आंतरिक उनकी जो विमुक्ति हुई है उसका प्रकाश उनके ऊपर दिखाई दे रहा.
And he seems to have been a very handsome man.
और बहुत ही सुंदर ऐसा उनका व्यक्तित्व था.
And he was walking along very, very mindfully, very calmly.
तो रास्ते से बहुत ही स्मृति पूर्वक बड़े शांति से वे चले जा रहे थे.
And that can be very, very impressive.
और ये बात बहुत ही प्रभावित करने वाली होती है.
I remember the first time I saw Bhante Sangharakshana.
मैं याद करता हूँ कि पहली बार जब भंते संगरक्षित जी को मैंने देखा.
I lived in the same area of London as him.
और जैसे भंते जी जहाँ रहते थे उसी लंदन के एरिया में क्षेत्र में मैं रहता था.
And one day when I was a student, I was just walking the streets of London.
और एक दिन जब मैं विद्यार्थी था तो उस लंदन के सड़क पे मैं चल रहा था.
And I saw a figure coming towards me.
और मैंने देखा कि एक व्यक्ति मेरी तरफ चला आ रहे है.
And he was wearing a long cloak.
तो बहुत ही ऐसा लंबा जो कपड़े वस्त्र उसने धारण किए थे.
Covering his robes, he wore robes at that time.
तो उस समय वो चिवर पहनते थे, उस चिवर को उन्होंने उस प्रकार से उस इसमें ढक के रखा था.
Well, you don't see that in England much.
तो इंग्लैंड में इस प्रकार के कई लोग आप देखते नहीं.
So my attention was caught.
तो मेरा ध्यान उनकी तरफ गया.
But once my attention was caught, what I saw was that he was deeply concentrated, deeply mindful.
तो जब मेरा ध्यान उनकी तरफ गया तो मैंने देखा वो बहुत ही गहरे एकाग्रता में थे.
And this made an impermanent impression on my mind.
और मेरे मन पर उसका पूरा मतलब पक्का ऐसा एक बड़ा असर हो गया.
I didn't forget it.
मैं इसको भूल नहीं पाया.
I can see it now in my mind.
अभी भी मेरे मन से उस चीज को मैं देख सकता हूँ.
I didn't actually meet Bhante for another year.
हाँ, लेकिन एक साल तक तो भंते जी को मैं मिला नहीं.
But he'd already made an impression on me.
लेकिन पहले ही उनका जो एक प्रभाव है मुझ पर पड़ चुका था.
So the Buddha was walking along like that.
हाँ, तो बुद्धा इसी प्रकार से उस मार्ग से चले जा रहे.
And a Brahmin was walking by.
और एक ब्राह्मण जो है वो भी रास्ते से चल रहे थे.
And he saw this figure coming towards him.
और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ से चला आ रहा है.
Shining with his inner happiness and freedom.
तो उनकी आंतरिक जो सुख है, मुक्ति है, उसका प्रकाश उनके ऊपर दिखाई दे रहा था.
Very, very mindful.
बहुत ही स्मृति पूर्वक वे चल रहे थे.
And the Brahmin was very, very struck, very impressed.
और ब्राह्मण जो है वो बहुत ही अवाक रह गए, वो बहुत ही मतलब प्रभावित हो गए.
So he asked immediately, asked the Buddha, "Who are you?"
और फिर तुरंत उन्होंने बुद्ध से पूछा कि आप कौन हैं?
Are you a bhoot?
क्या आप भूत हैं?
Are you a human being? And sorry, are you a god?
क्या आप ईश्वर हैं?
The Buddha said, "No, I'm neither of those."
बुद्ध ने कहा, मैं ये दोनों भी नहीं हूँ.
Well, are you a yaksha?
क्या आप यक्ष है?
No.
उन्होंने कहा नहीं.
Are you a human being?
क्या आप मानव है?
The Buddha said, no.
बुद्ध ने कहा नहीं.
I'm sure that nowadays what people would have said is, what is your शुभ नाम?
तो अभी जैसे आजकल लोग कहते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है?
Because then you know which caste it comes from.
और फिर आपको पता चलता है कि ये कौन से जाति का.
But anyway, the Buddha just said no to all these questions.
लेकिन बुद्ध ने सारे सवालों का जवाब ना में दिया.
So he wouldn't let himself be put in any of those boxes.
तो बुद्ध ने क्या किया कि किसी प्रकार से ये जो डिब्बे होते हैं उस डिब्बे में खुद को मतलब बंदिश नहीं किया.
He didn't think of himself even as a human being.
तो बिल्कुल मानव के रूप में भी वो स्वयं का विचार नहीं कर रहे थे.
Of course, in a sense, he was a human being.
तो अर्थ से देखा जाए तो वो बिल्कुल मानव थे ही.
But he didn't think of himself as limited by being a human being.
लेकिन एक मानव के रूप में वो बहुत मर्यादित है ऐसा वो स्वयं को नहीं देख रहे थे.
So this Brahmin said, well, you're not a yaksha, you're not a bhoot, you're not a deva. What are you? Not a human being. What are you?
तो आप यक्ष नहीं है, भूत नहीं है, देव नहीं है, मानव नहीं है, तो फिर आप कौन है?
So the Buddha said, I am a Buddha.
फिर बुद्ध ने कहा कि मैं बुद्ध हूँ.
Because a Buddha is someone who is completely free from all restrictions, all definitions.
क्योंकि बुद्ध जो है सारे जो मतलब मर्यादा होती है, सारी जो व्याख्या है होती है उससे पूरी तरह से वे मुक्त होते हैं.
So there he is, sitting there under the tree, completely free from all inner restrictions.
तो उस वृक्ष के नीचे बैठकर अंदर के जो भी हमारी सारी मर्यादाएं होती है उससे सारी तरह से पूरी तरह से वे मुक्त हो गए.
A very great feeling of freedom.
बहुत ही मतलब मुक्ति का स्वतंत्रता का उनको अनुभव हुआ.
A big relief.
हाँ, एक प्रकार से उनको बड़ी निजात महसूस हुआ.
He says sometimes that it's like putting down a burden.
तो जैसे मानो हम पर कोई बोझ है और बोझ उठाकर हमने रख दिया ऐसा उनको लगा.
Most of the time we're walking along with a big weight on our backs.
तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पीठ पर बहुत सारा वजन हम लोग ढोते रहते हैं.
You know, big weight on our heads pushing us down.
तो हमारे सिर पर बहुत बड़ा बोझ होता है जो हमको बिल्कुल दबाते रहता है.
It's the weight of ourselves.
तो ये जो बोझ है ये हमारे स्व का है, स्वयं का है.
When you realize it's not really there, it's not anything fixed. You just let it go.
और जब आपको ये अनुभव होता है कि वहाँ ये नहीं है, कोई भी ऐसा पक्का नहीं है, तो आप उसको जाने देते हैं, छोड़ देते हैं.
So you know, just like when you've been carrying something very heavy and you put it down, you feel very relaxed.
तो जैसे कोई बहुत ही वजनदार चीज आप अपने साथ लेके चल रहे हैं और आपने उसको छोड़ दिया तो एकदम आपको सहज लगता है, बड़े विश्राम से आप रहते हैं, ऐसा कुछ हुआ.
That's what the Buddha felt when he was sitting there under that tree.
और यही बात हुई जब उस वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे हुए थे.
And he just sat for one whole week. Enjoying that experience.
और एक सप्ताह तक ये जो अनुभव है इसका आनंद लेते हुए वे वहाँ बैठे रहे.
As I say, these the succession of experiences that unfold one from the other.
और फिर एक अनुभव से दूसरे अनुभव की, उस अनुभव से दूसरे अनुभव की निर्मिति होते रही.
So the story is, after one week, he got up and he walked over to where that temple is, the great temple just over there.
और उसके बाद एक सप्ताह के पश्चात पे वहाँ से उठे और वो जो विहार दिख रहा है वहाँ तक वो चलकर आए.
एंड इट्स कॉल्ड द प्लेस ऑफ द अनविंकिंग आई.
और फिर उसको इस प्रकार की जगह कहते हैं कि जहाँ उन्होंने पलके भी बिल्कुल झपकाई नहीं, ऐसी जगह.
बिकॉज द बुद्धा सैट देयर एंड ही जस्ट लुक्ड एट द ट्री.
क्योंकि बुद्ध वहां बैठे है और केवल उस वृक्ष की तरफ वे देखते रहे.
ही जस्ट गेज्ड एट द महाबोधि ट्री.
तो ये जो महाबोधि वृक्ष है केवल बुद्ध उसको देखते रहे.
एंड द स्टोरी इज ही डिडंट इवन क्लोज हिज आईज वंस इन अ वीक.
और कहानी ऐसी हमें बताती है कि पूरे सप्ताह भर एक बार भी उन्होंने अपनी पलके जो है वो बंद नहीं की.
Well, maybe that's true, I don't know.
अब ये सत्य है या नहीं मैं नहीं जानता.
I've never seen a video of what happened.
तो क्या हुआ था इसका वीडियो कुछ मैंने देखा नहीं.
But presumably what that means is that he was looking at it with great concentration, with great focus.
तो एक बात इसमें नजर आती है कि पूरी एकाग्रता के साथ बुद्ध जो है उस वृक्ष की तरफ देख रहे थे.
So what does this mean? What does this indicate?
तो इसका अर्थ क्या होता है, ये कौन सी बात दर्शाता है?
What it means, what it indicates is the gratitude that the Buddha felt.
तो इससे ये मतलब अर्थ निकलता है, ये एक बात को दर्शाता है कि बुद्ध के मन में जो कृतज्ञता निर्माण होती ये बात वो दर्शाती है.
In the unfolding of these experiences within the Buddha, an overwhelming gratitude came for the tree.
और उनके अंदर इस प्रकार की जो सकारात्मक ऐसे भाव है एक के बाद एक निर्माण होते गए और उस वृक्ष के प्रति उनके मन में बहुत ही कृतज्ञता का जो भाव है वो निर्माण हो गया.
It's very interesting. All the places connected with this site where the Buddha sat are trees.
अब ये बात बड़ी रोचक है कि ये जो जगह है जहाँ जहाँ बुद्ध बैठे वो वृक्ष से जुड़े हुए हैं.
And it seems as if the Buddha saw the trees as alive.
और इससे ऐसा दिखाई देता है कि बुद्ध ये समझ रहे थे कि ये जो वृक्ष होते हैं ये जीवित है.
Well, they are alive.
अर्थात वे जीवित ही है.
The tree is alive like you are alive.
जैसे आप जीवित है उसी प्रकार से वृक्ष भी जीवित है.
Of course, its life is different to yours.
तो अर्थात ये आपका जीवन उससे बिल्कुल भिन्न है.
But it's alive.
लेकिन ये जीवन है.
And the Buddha felt that life in everything around him.
और बुद्ध को उनके इर्द गिर्द जो भी जीवन है वो उनको महसूस हुआ.
He felt his kinship with all life.
तो सारा मतलब जो जीवन है उससे भी अपना एक प्रकार का संबंध जो है वो देख रहे थे.
So he could feel gratitude for that which had sheltered him.
और जिसने उनको इस प्रकार के छाव दिए उसके प्रति उनके मन में एक बहुत ही कृतज्ञता का भाव निर्माण हुआ.
Because the tree was there, he'd been able to sit in the shade.
अभी वृक्ष वहाँ था इसलिए वो छाव में वहाँ बैठ सके.
Because the tree was there, he'd been protected.
और वृक्ष वहाँ होने से उनकी वहाँ सुरक्षा हुई.
Perhaps when he was a bit tired, he could lean his back against it.
शायद जब वो थक जाते होंगे तो अपनी जो पीठ है वो पेड़ से सटकर बैठते होंगे.
So, yes, what does this mean?
तो इसका क्या अर्थ होता है?
Even the Buddha feels this gratitude, even for a tree.
तो बुद्ध भी जो है वृक्ष के प्रति भी उनके मन में कृतज्ञता का भाव निर्माण होता है.
Gratitude is, well, a spiritual state.
कृतज्ञता जो है ये एक आध्यात्मिक अवस्था है.
We live independence on everything else.
तो हर एक जो चीज है उससे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हम अपना जीवन जीते हैं.
This ground is holding us up.
हाँ, तो ये जो पृथ्वी है जो जमीन है वो हमें पकड़ के रखी है उस पर हम बैठे हैं.
This tree is shading us.
तो ये जो वृक्ष है ये हमें छाव दे रहा है.
The sun is keeping us warm.
सूरज जो है वो हमें हमें गर्मी बनाए रखे हुए.
Somebody has made this path.
तो किसी ने ये मतलब मार्ग बनाया है.
Somebody's kept it, the grass cut.
किसी ने ये घास को काटा है.
Somebody organizes the Mahabodhi temple.
अभी महाबोधि विहार को किसी ने संगठित किया है.
There's a management committee that arranges it all for us.
और यहाँ एक व्यवस्थापन समिति है जिसने सब निर्माण किया है.
There's a government that keeps at least some order.
सरकार जो है कम से कम कुछ मतलब ऑर्डर बनाए रखता है.
Maybe
कुछ अनुशासन बनाए रखता
है. Maybe there could be more, but at least there's some.
तो ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कुछ तो है.
We depend on so much.
तो बहुत सारी चीजों पर हम निर्भर होते हैं.
Most of us are here because of the help of others.
हम बहुत सारे लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि किसी ने हमें मदद की है.
Others have helped us to come here in one way or another.
तो किसी ने हमें यहाँ आने के लिए एक ना या किसी न किसी रूप में हमको मदद की है.
In my own case, people raise money for my journey.
अभी अगर मेरा ही देखा जाए तो मेरे प्रवास के लिए लोगों ने पैसा खड़ा किया.
You may have duties that you've been able to pass on to other people.
तो आपके कुछ काम होंगे कर्तव्य होंगे जो आप औरों को ऊपर छोड़कर ही आए होंगे.
Our lives all the time are completely dependent upon the lives of so many others.
तो हमारा जो जीवन है अन्य बहुत सारे जो जीवन है उसके ऊपर ये निर्भर होता है.
One single grain of rice depends upon the labor of so many people.
तो एक मतलब चावल का दाना जो है तो बहुत सारे लोगों के श्रम के ऊपर वो निर्भर होता है.
And the Buddha feels this interdependence.
तो बुद्ध ने देखा कि ये हम एक दूसरे के ऊपर जो निर्भर होते हैं ये बात बुद्ध के ध्यान में आई.
And when you realize your dependence on others, you feel gratitude to them.
और जब आपको ये अनुभव होता है कि औरों के ऊपर भी आप निर्भर है तो उनके प्रति कृतज्ञता का जो भाव है वो निर्माण होता है.
You even can feel, oh, thank you, ground, for supporting me.
तो आपके मन में ये भी भाव निर्माण होता है कि आप जमीन को धन्यवाद देते हैं कि जमीन ने आपको मतलब एक प्रकार से आधार दिया है.
थैंक यू ट्री फॉर शेडिंग मी.
तो धन्यवाद वृक्ष आपने मुझे छाव दिए हैं.
थैंक यू टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी फॉर मेकिंग दिस अरेंजमेंट.
तो धन्यवाद ये बिहार व्यवस्थापन समिति कि आपने ये सुविधा दी है.
थैंक यू बिहार गवर्नमेंट फॉर कीपिंग अस अ बिट सेफ.
तो बिहार का जो सरकार है उनको धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये सुरक्षा प्रदान की है.
एंड सो ऑन.
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं.
Thank you to Sachin for keeping the land going.
तो सचिन को धन्यवाद कि वो जमीन उन्होंने वहाँ पर बनाए रखी है.
थैंक यू बुद्ध वज्र फॉर मेकिंग ऑल दिस अरेंजमेंट्स फॉर अस.
हाँ, बुद्ध वज्र को धन्यवाद, उन्होंने सारा ये जो व्यवस्थापन है उसको किया है.
थैंक यू मनीष फॉर अरेंजिंग सो मच फॉर अस.
हाँ, धन्यवाद मनीष के लिए, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो है उपलब्ध कराई.
थैंक यू महाबोधि सोसाइटी फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर अस.
तो महाबोधि जो सोसाइटी है उन्होंने कुछ जगह हमें वहाँ पर उपलब्ध कराई, उनको धन्यवाद.
थैंक यू रिक्शा वाला मुनीलाल पासवान for bringing our breakfast.
तो जो हमारे रिक्शा वाले हैं उनको धन्यवाद, मुनीलाल पासवान जो हमें यहाँ लेकर आए.
So many people have helped us.
तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें मदद की है.
And it seems that this is it's appropriate, it's part of even Dhamma to feel gratitude.
तो एक बहुत ही उचित ऐसी बात है, धम्म का ही एक हिस्सा है कि औरों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव निर्माण.
That's what flowers in the Buddha's mind immediately after his enlightenment.
और बुद्धत्व जब उनको प्राप्त हुआ बुद्ध को, तो तुरंत उनके मन में जो भाव निर्माण हुआ वो ये भाव है.
The tree represents everything that supported him.
तो वृक्ष जो है उनको जो भी मदद मिली है उसका वो प्रतीक था.
It represents his mother and father.
तो एक प्रकार से उनके माता पिता का वो प्रतीक था.
Everything that supported him.
तो हर एक चीज के लिए उन्होंने उस वृक्ष ने उनको मदद की.
So this is something that we can very directly relate to.
तो ये ऐसी चीज है जो प्रत्यक्ष रूप से हम भी उसको अपना संबंध वहाँ देख सकते हैं.
If you don't feel gratitude, in a way you don't realize what you've got.
अगर आपके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपको जो कुछ मिला है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है.
So for instance, take the Buddha.
अभी उदाहरण के रूप में बुद्ध को ले लीजिए.
We are here because of what the Buddha saw under that Bodhi tree.
हम लोग यहाँ है क्योंकि उस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध देख पाए जो कुछ, उस वजह से हम यहाँ है.
Because of the freedom that the Buddha found under that Bodhi tree, Dr. Babasaheb Ambedkar found the freedom to break free from caste.
बुद्ध ने उस वृक्ष के नीचे जो स्वतंत्रता है वो देख पाया है, और वहीं से बाबा साहब ने प्रेरणा लेकर इस जाति से हमें स्वतंत्रता दिलाई है.
Because Baba Saheb found the freedom to break free from caste, you have found the freedom to break free from caste.
तो बाबा साहब ने इस प्रकार से मार्ग देखा है कि जाति से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, और आपने भी इस प्रकार से जाति से मुक्त होने का प्रयास किया है.
So, well, when we realize that, we feel deep, deep gratitude to Baba Saheb and to the Buddha, his master.
और जब ये बात हमें समझ में आती है तब बहुत ही गहरी ऐसी कृतज्ञता का जो भाव है वो बाबा साहब के प्रति और बाबा साहब के जो गुरु बुद्ध है उनके प्रति हमारे मन में निर्माण होती है.
If we don't feel that gratitude, it means we don't really realize what we've got.
अगर इस प्रकार का कृतज्ञता हमारे मन में अगर निर्माण नहीं होती तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि सही में हमें क्या मिला है, क्या प्राप्त हुआ है.
If we don't realize what we got, we'll easily lose it.
और जो कुछ हमें मिला है अगर ये समझ में नहीं आया तो बड़े आसानी से हमारे पास से ये बात चली जाएगी.
And we see this with many Ambedkarites.
और हम देखते हैं कि बहुत सारे अम्बेडकराइट जो है उनके साथ हो रहा है.
They've got good jobs, they've got good education.
उनको अच्छी नौकरियां मिली, अच्छी शिक्षा मिली.
And they forget what they've got.
और जो कुछ उनको मिला वो भूल गए.
I think you get the same in Hungary with the gypsy people. Some of them get good education, they forget where they've come from.
तो हंगेरी में भी जो जिप्सी हमारे लोग हैं उनके साथ भी होता है कि जिनको अच्छे नौकरियां मिली वे अपने लोगों के बारे में भूल जाते हैं.
इफ यू डोंट वैल्यू इट, यू विल लूज इट.
अगर आप इसका मूल्य नहीं समझते तो ये चीज आपसे चले जाएंगे.
सो द बुद्धा इज टीचिंग अस अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लेसन.
तो बुद्ध की ये जो शिक्षा है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पाठ है.
आवर लाइव्स आर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट विद द लाइफ अराउंड अस.
हमारा जो जीवन है तो हमारे इर्द गिर्द आस पास जो भी जीवन है इसके ऊपर ये निर्भर होता है.
You know, when you breathe in, you're breathing in oxygen.
जैसे आप सांस लेते हैं तो आप प्राणवायु अंदर लेते हैं.
That's what the plants are breathing out.
तो ये जो प्लांट वृक्ष है पौधे है तो इसी बात को वो बाहर छोड़ रहे हैं.
The plants are breathing out oxygen which refreshes our air, our atmosphere.
तो ये जो भी मतलब पौधे है वो प्राणवायु बाहर छोड़ते हैं और उससे हमें ये प्राणवायु मिलता है सांस लेने के.
And part of the problem of the modern world is that we've made it more difficult for oxygen to survive.
लेकिन आधुनिक जगत में अभी समस्या ये है कि प्राणवायु बना रहे इसके लिए हमें ही नहीं बहुत सारी मतलब समस्याएं निर्माण किए.
So even the breath that we take is dependent upon the world around us.
तो सांस भी भले ही हम लेते हो, लेकिन ये सांस भी हमारी बाहर की जो दुनिया है उसके ऊपर निर्भर करती है.
We need to have that very great sense of gratitude, of appreciation of everything that's supporting us.
तो हर एक चीज जिससे हमें मदद मिल रही है उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए. उस बात को भली भांति हमने समझना चाहिए.
And especially we need to have that in the sphere of Dhamma.
और खासकर धम्म के अगर संदर्भ में देखा जाए तो ये बात हमारे मन में होनी चाहिए.
We need to have appreciation of our friends who support us.
तो हमारे मित्र जो हमें मदद करते हैं, हमने इस बात को मतलब मानना चाहिए, समझना चाहिए.
We need to have appreciation of our teachers.
हमारे जो गुरु है उनके प्रति हमारे मन में ये एक प्रशंसा का भाव होना चाहिए.
Our teachers are not perfect.
हमारे गुरु कोई परिपूर्ण नहीं है.
At the moment I'm your teacher.
तो अभी समय मैं आपका गुरु हूँ.
And I can tell you I'm not perfect.
और मैं ये बता सकता हूँ कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ.
I'm not going to tell you how I'm not perfect. That's for you to notice.
तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे परिपूर्ण नहीं हूँ, ये आपको देखना है.
But at least I can communicate something of the Dhamma to you.
लेकिन धम्म की कुछ बातें मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ.
Even Bhante Sangharakshita is not perfect.
अभी भंते संगरक्षित जी भी कोई परिपूर्ण नहीं है.
But he's enabled the Dhamma to come to us.
लेकिन उनके वजह से धम्म हमारे तरफ आया है.
Maybe Baba Sahib had some faults, I don't know.
अभी मैं नहीं जानता, बाबा साहब में भी कुछ खामियां होगी.
But he gave us the Dhamma that gave us freedom.
तो उन्होंने हमें धम्म दिया है, उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई है.
So we need to look at what we are gaining, what we're benefiting.
तो हमें ये देखना है कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, किस बात से हम लाभान्वित हो रहे हैं.
So when we see that particular place, the place of the unwinking gaze, this is what we remember.
तो उस जगह को जब हम देखते हैं कि जब पलक न झपकाते हुए वे बैठे रहे, तो ये बात हमें ध्यान में आती है.
We remember the great gratitude that arose in the mind of the Buddha.
हम ये बात याद करते हैं कि बुद्ध के मन में कितने गहरा मतलब कृतज्ञता का भाव जो है वो निर्माण हुआ.
Yes, he discovered this freedom by himself.
अभी ये सही है कि उन्होंने स्वयं इस मुक्ति को खोज निकाला.
But he could not have done it without the shade of that tree.
लेकिन उस वृक्ष की छाया के बगैर उनको ये करना संभव नहीं हुआ होता.
He could not have done it without Sujata's khir.
तो सुजाता की खीर प्राप्त किए बगैर उन्हें ये करना संभव नहीं हुआ होता.
He couldn't have done it without the kusa grass from that herdsman.
और वो जो किसान ने उनको जो कुसा घास दिया उसके बगैर उनको ये करना संभव नहीं हुआ होता.
And so on and so on.
तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं.
And he felt that very, very deeply, very intensely.
और बहुत ही गहराई से उन्हें ये बात अनुभव हुआ.
So if we can feel that sort of gratitude, we're coming closer to the Buddha.
और इस प्रकार की कृतज्ञता का भाव जब हम में निर्माण होता है तो हम बुद्ध के और करीब आते हैं.
We're realizing who we are really.
और हम ये अनुभव लेते हैं कि सही में हम कौन हैं.
We're completely inter-involved with others.
तो हम पूरी तरह से औरों के साथ हम निर्भर रहते हैं, औरों के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं.
That means that whatever we gain, we need to contribute back.
इसका अर्थ ऐसा होता है कि जो कुछ हम प्राप्त करते हैं तो हमने इसको औरों को दे देना है.
Because when you feel gratitude, you want to express it.
जब आपके मन में कृतज्ञता का भाव निर्माण होता है आप उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं.
If you don't express gratitude, it dies.
अगर कृतज्ञता को आप व्यक्त नहीं करते तो वो वहाँ नष्ट हो जाती है.
But if you feel gratitude, you want to contribute back.
अगर आपके मन में कृतज्ञता का भाव निर्माण होता है तो आप उसको वापस देना चाहते हैं.
We've got so much from Baba Sahib.
बाबा साहब से हमको बहुत कुछ मिला है.
So we need to express, we need to feel our gratitude to him.
तो हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव निर्माण होना चाहिए.
And we need to express that gratitude.
और हमें ये जो कृतज्ञता है उसको व्यक्त करना चाहिए.
We do that by doing his work.
उनके कार्य को करके हम ये बात करते हैं.
We need to feel our gratitude to the Buddha.
बुद्ध के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता होनी चाहिए.
And we express that gratitude by practicing his path and spreading it to others.
और बुद्ध के मार्ग पे चलकर बुद्ध के धम्म का प्रचार करके हम ये कृतज्ञता को जो है वो व्यक्त करते हैं.
Whatever freedom we have experienced comes from the Buddha.
जो भी मुक्ति स्वतंत्रता का जो भी हम लोग अनुभव लेते हैं ये बुद्ध से आती है.
Now we need to experience that more deeply and share it with others.
तो हमें और गहराई से इसको अनुभव लेना है और औरों के साथ इसको हमें बांटना है.
So this is the message of the second week.
तो दूसरे सप्ताह का ये संदेश है.
So as the day goes by, try to remember this.
तो जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, इसको याद रखने का प्रयास कीजिए.
And maybe go over there and just sit there for a while.
तो अभी शायद हम वहाँ चलेंगे और कुछ समय के लिए केवल वहाँ हम बैठेंगे.
And just look yourself.
आप स्वयं उसकी तरफ देखिए.
You can just see one or two branches of the Bodhi tree coming out from around the temple.
हाँ, और विहार के मतलब बाजू से आप देखेंगे कि कुछ शाखाएं जो है बोधि वृक्ष की वो वहाँ से निकली है.
So while you're there, reflect on your debt, your gratitude to the Buddha.
और फिर वहाँ जाने के बाद बुद्ध के प्रति आपकी जो कृतज्ञता है, बुद्ध के प्रति आपके मन में जो भी ऋण है उसको आप याद कीजिए.
On your gratitude to Baba Sahib.
बाबा साहब के प्रति जो कृतज्ञता है उसको आप याद कीजिए.
Your gratitude to your parents.
आपके जो माता पिता है उनके प्रति जो कृतज्ञता है उसको याद कीजिए.
Your brothers and sisters.
आपके भाई बहनों के प्रति जो कृतज्ञता है उसको याद कीजिए.
Your gurus, your teachers, even your school teachers.
तो आपके जो भी गुरु है, आपके स्कूल के जो टीचर्स है, उनको भी आप कृतज्ञता उनके प्रति निर्माण कर सकते.
So sit with the Buddha, experiencing in your own way his gratitude.
तो वहाँ बैठकर जैसे बुद्धा अपनी कृतज्ञता को अनुभव कर रहे थे, उसी प्रकार से आप भी कृतज्ञता जो है उसको अनुभव कीजिए.
And try to make some commitment to expressing that gratitude by serving the Buddha, serving Baba Sahib.
और एक प्रकार से स्वयं में प्रतिबद्ध हो जाइए कि बाबा साहब के प्रति जो कृतज्ञता है, बुद्ध के प्रति जो कृतज्ञता है, तो इसी प्रकार की कुछ सेवा करके कृतज्ञता को हम व्यक्त कर सके.
So that's our practice for the day.
तो आज के दिन की हमारी यही मतलब साधना है, ये आचरण है.
We'll just have a 2 minute break and then we'll sit here.
तो दो मिनट के लिए भी हम लोग अवकाश लेंगे और फिर से आकर हम बैठेंगे.
And just do what you want.
और फिर जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं.
Follow through this feeling of gratitude as much as you can.
और जितना आपसे संभव हो उतना ये जो कृतज्ञता का भाव है उस भाव को आप देखिए.
When you feel like it, go and go to that place.
और जब आपको लगा तो उस जगह आप जा सकते हैं.
I will stay here.
मैं यहाँ रहूँगा.
I can watch things for you if you want.
और अगर आप चाहे तो आपके लिए उस सारी जो चीजें उसको मैं उसकी देखभाल करूंगा.
Maybe after a while I'll ask somebody else to stay here and watch things.
और कुछ समय के पश्चात मैं और किसी को बोल सकता हूँ कि चीजों का वो ध्यान रखे.
But yes, I will be here till 12:15 when we go for lunch.
तो मैं यहाँ 12:30 बजे तक यही रहूंगा.
But yes, contemplate the Buddha's gratitude.
तो बुद्ध की जो कृतज्ञता है उसके ऊपर आप चिंतन कीजिए.